एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो हमारे डिजिटल जीवन की बुनियाद को समझने में वाकई मदद करती है।
नमस्कार, मैं हूँ आपकी साथी एक्सपर्ट और आज बात हो रही है अमृत तिवाना की किताब द इंटरनेट स्टैक की।
हाँ, द इंटरनेट स्टैक। और ये किताब इतनी जरूरी क्यों है?
देखिए, हम सब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ऐप्स चलाते हैं, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो हम अक्सर नहीं जानते।
सही बात है।
ये किताब उसी अदृश्य संरचना, उसी स्टैक की बात करती है, और ये स्टैक ही तय करता है कि कौन सी कंपनियां चलेंगी, पैसा किधर जाएगा,
और यहाँ तक कि कौन से देश दुनिया पर टेक की दुनिया में राज करेंगे।
बिल्कुल, ये सिर्फ एक नेटवर्क नहीं, ये एक बहुस्तरीय ढांचा है।
तो आज का हमारा लक्ष्य यही है, इस स्टैक मॉडल को थोड़ा खोलकर समझना। ये सिर्फ टेक की बात नहीं है, इसमें रणनीति है, पैसा है, इनोवेशन है, और यहाँ तक कि जियोपॉलिटिक्स भी।
हाँ, हम देखेंगे कि ये परतें कैसे काम करती हैं और कैसे ये शक्ति, पैसा और नए आइडियाज के बहाव को कंट्रोल करती हैं।
चलिए तो फिर लेखक से शुरू करते हैं, अमृत तिवाना।
हाँ, अमृत तिवाना ये कोई टिपिकल टेक गुरु नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में प्रोफेसर है और इनका काम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, बिजनेस इकोसिस्टम, आईटी स्ट्रेटजी, इन सब पर फोकस्ड है। दुनिया भर में जाने जाते हैं।
और मुझे लगता है इनकी सबसे खास बात यह है कि इनमें टेक और बिजनेस दोनों की गहरी समझ है।
बिल्कुल, अक्सर क्या होता है, लोग या तो सिर्फ तकनीक समझते हैं या सिर्फ बिजनेस।
हाँ,
तिवाना इन दोनों को जोड़ते हैं। इनकी एक पिछली किताब थी प्लेटफॉर्म स्केल, उसने इन्हें प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल का एक बड़ा एक्सपर्ट बना दिया था।
अच्छा।
और ये किताब द इंटरनेट स्टैक उसी समझ को और आगे ले जाती है, मतलब ये उसी रिसर्च का अगला कदम है।
और एक बात और, वो मुश्किल चीजों को ना बड़े आसान फ्रेमवर्क में समझा देते हैं। ये स्टैक मॉडल खुद ही इसका एक उदाहरण है।
सही कहा। और क्योंकि वो एक एकेडमिक हैं, प्रोफेसर हैं, तो उनका विश्लेषण सिर्फ हवा हवाई बातों पर नहीं होता,
रिसर्च बेस्ड होता है।
हाँ, गहरे शोध पर आधारित होता है। वो कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटजी, जियोपॉलिटिक्स सबको मिलाकर एक बड़ी पूरी तस्वीर दिखाते हैं।
तो अब आते हैं किताब के दिल पर, ये स्टैक आखिर है क्या भला?
हाँ, तो किताब का निचोड़ ये है कि हमें इंटरनेट को एक फ्लैट नेटवर्क की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक बहुस्तरीय चीज की तरह, जैसे जैसे एक केक होता है ना, जिसमें कई परतें होती हैं।
अच्छा, केक की परतें? दिलचस्प उपमा है।
हाँ, तो सोचिए, सबसे ऊपर की परत में वो ऐप्स और वेबसाइट्स हैं जो हम रोज यूज करते हैं, फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, ये सब। इसे कहते हैं कंटेंट लेयर।
ठीक है, ये तो समझ आता है।
लेकिन इसके नीचे और भी परतें हैं। एक है एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पर क्लाउड सर्विसेज हैं जैसे AWS, Azure, गूगल क्लाउड, ऑपरेटिंग सिस्टम भी यही हैं, iOS, Android। फिर उसके नीचे है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये डेटा कैसे जाएगा उसके नियम तय करती है, TCP/IP जैसे प्रोटोकॉल यहाँ आते हैं।
ओके।
और सबसे नीचे एकदम बुनियाद में है फिजिकल लेयर, समुन्दर के नीचे जो केबल बिछी हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर, मोबाइल टावर, सर्वर, वो सब।
वाह, तो ये सारी परतें मिलकर बनाती हैं इंटरनेट स्टैक।
बिल्कुल, और किताब का जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये है कि ये स्टैक सिर्फ एक टेक्निकल नक्शा नहीं है।
अच्छा, तो फिर क्या है?
ये एक रणनीतिक अखाड़ा है, स्ट्रेटेजिक बैटल ग्राउंड। इसकी बनावट ही तय करती है कि डिजिटल दुनिया में पावर किसके पास होगी, पैसा कैसे बहेगा, कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे रह जाएगा।
ये बहुत अहम बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग, चाहे वो नेता हों, पॉलिसी मेकर हों या टेक्नोलॉजिस्ट हों, वो इंटरनेट को टुकड़ों में देखते हैं।
हाँ, वो शायद किसी एक ऐप या एक टेक्नोलॉजी को समझते हैं, लेकिन इन परतों के बीच क्या चल रहा है, उनके आपसी रिश्ते, उनके टकराव, उसे नहीं समझ पाते।
और ये किताब इसी पहेली को सुलझाती है ना, कि इंटरनेट की ये जो छिपी हुई लेयर्ड बनावट है, वो कैसे तय करती है कि डिजिटल दुनिया में कौन जीतेगा और कौन हारेगा।
एकदम। और ये किताब सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, कोई भी जिसे डिजिटल दुनिया में फैसले लेने हैं, बिजनेस लीडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स, सबके लिए जरूरी है।
तो चलिए अब इन परतों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। किताब का पहला हिस्सा कहता है, आर्किटेक्चर ही रणनीति है, मतलब तकनीक की बनावट ही बिजनेस की दिशा तय करती है।
कहां से शुरू करें? सबसे नीचे से, फिजिकल लेयर।
हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। फिजिकल लेयर, ये वो बुनियाद है जिस पर पूरा इंटरनेट खड़ा है।
सोचिए, समंदर के नीचे हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल, वो बड़े बड़े वेयरहाउस जैसे डेटा सेंटर जहां हमारा सारा डेटा स्टोर होता है,
मोबाइल टावर जिनसे हमें सिग्नल मिलता है, सर्वर,
ये सब
फिजिकल लेयर का हिस्सा है।
ये बेहद जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं चलेगा।
लेकिन तिवाना कहते हैं कि ये परत काफी हद तक कमोडिटी बन गई है।
कमोडिटी मतलब?
मतलब ऐसी चीज जिसमें बहुत सारी कंपनियां एक जैसी सेवा दे रही हों तो ज्यादा मुनाफा कमाना मुश्किल हो जाता है।
अच्छा,
और इसे बनाने में पैसा भी तो बहुत लगता होगा।
हाँ, भारी पूंजी निवेश चाहिए, इसीलिए कुछ ही बड़ी कंपनियां यहाँ हावी हैं। टेलीकॉम कंपनियां जैसे AT&T, वेराइजन, या फिर डेटा सेंटर वाली कंपनियां, गूगल और मेटा जैसी कंपनियां भी अब अपनी केबल बिछा रही हैं।
लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा तिवाना कहते हैं कि इन फिजिकल पाइपों पर कंट्रोल होने का मतलब ये नहीं कि आप असली वैल्यू पर भी कंट्रोल रखते हैं।
हाँ, मतलब टेलीकॉम कंपनियां हाईवे तो बना देती हैं, लेकिन उस हाईवे पर चलने वाली चमचमाती गाड़ियों से, यानी एप्स और कंटेंट से, असली कमाई कोई और कर रहा है।
ठीक, अब इसके ऊपर कौन सी परत आती है?
ट्रांसपोर्ट लेयर। हाँ, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये परत डेटा के आने जाने के नियम तय करती है, रूल्स ऑफ द रोड एक तरह से।
और इसमें मुख्य चीज क्या है? प्रोटोकॉल।
बिल्कुल, प्रोटोकॉल यानी नियमों का सेट। सबसे मशहूर है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह तय करते हैं कि डेटा कैसे छोटे छोटे पैकेट में टूटेगा, कैसे भेजा जाएगा और दूसरी तरफ सही सलामत कैसे पहुंचेगा।
और इस परत की सबसे खास बात क्या थी?
इसकी सबसे क्रांतिकारी बात थी इसका खुलापन और मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। ये नियम किसी एक कंपनी के प्रॉपर्टी नहीं थे,
पब्लिक थे।
हाँ, सार्वजनिक थे, कोई भी इनका इस्तेमाल करके इंटरनेट पर कुछ भी बना सकता था। इसी खुलेपन ने इनोवेशन को जबरदस्त बढ़ावा दिया ऊपर की परतों पर।
अच्छा, मतलब फेसबुक या गूगल बनाने वालों को किसी टेलीकॉम कंपनी से परमिशन नहीं लेनी पड़ी?
नहीं लेनी पड़ी। इसे एंड टू एंड सिद्धांत कहते हैं। नेटवर्क का काम सिर्फ डेटा पहुंचाना है, वो बीच में ये नहीं देखेगा कि डेटा में क्या है या उसे कहां जाना चाहिए, कहां नहीं।
समझ गया, अब आते हैं उस परत पर जहां आज असली ताकत सिमट गई लगती है, एप्लीकेशन लेयर।
हाँ, ये बीच की परत है और आज के दौर में बेहद शक्तिशाली है। इसमें क्या क्या आता है? क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स
जैसे अमेज़न की AWS, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर, गूगल क्लाउड।
बिल्कुल, और साथ ही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल का iOS, गूगल का एंड्रॉइड, और APIs भी।
APIs यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर को आपस में बात करने देते हैं।
हाँ, और ये पूरी लेयर तिवाना कहते हैं एक चोक पॉइंट बन गई है, मतलब एक अहम कंट्रोल पॉइंट।
चोक पॉइंट मतलब ये नए द्वारपाल हैं, गेटकीपर।
सही शब्द है, जो कंपनियां इसे कंट्रोल करती हैं, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, वो तय करते हैं कि कौन से एप्स चलेंगे, कैसे चलेंगे, और इसके लिए वो किराया भी वसूलते हैं।
जैसे ऐप स्टोर पर 30% कमीशन।
हाँ, वो एक उदाहरण है, और वो पूरे बाजार पर सारे ट्रेंड्स पर नजर भी रखते हैं, उन्हें पता होता है क्या चल रहा है।
लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है, इन्हीं क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की वजह से आज नए स्टार्टअप्स के लिए कुछ बनाना आसान भी तो हुआ है।
हाँ, ये बात भी सही है, उन्हें अब अपने महंगे सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, वो AWS या अज़ूर से कंप्यूटिंग पावर किराए पर ले सकते हैं। इससे इनोवेशन सस्ता और तेज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं।
ठीक है, अब सबसे ऊपरी परत पर चलते हैं जो हम सबको दिखती है, कंटेंट लेयर।
हाँ, ये वो जगह है जहां हम यूजर्स सबसे ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं, सर्च इंजन्स जैसे गूगल, सोशल मीडिया मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक,
वीडियो स्ट्रीमिंग, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ई कॉमर्स, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब कॉन्टेंट लेयर पर हैं।
और आज की डिजिटल इकोनॉमी में ज्यादातर पैसा, ज्यादातर इकोनॉमिक वैल्यू यहीं बन रही है।
कैसे? ये कंपनियां कमाती कैसे हैं?
असल में ये हमारा ध्यान और हमारा डेटा बेचकर अरबों कमाती हैं। विज्ञापन इनका मुख्य जरिया है या फिर सब्सक्रिप्शन।
और इनकी कामयाबी नेटवर्क इफेक्ट्स पर टिकी होती है ना?
बिल्कुल, जितने ज्यादा लोग एक प्लेटफॉर्म पर होते हैं वो उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। सोचिए, अगर आपके सारे दोस्त व्हाट्सएप छोड़ दें तो आपके लिए व्हाट्सएप का क्या काम?
कोई काम नहीं।
और एक और दिलचस्प बात, ये कंटेंट कंपनियां नीचे की फिजिकल और ट्रांसपोर्ट लेयर का खूब इस्तेमाल करती हैं। सारा वीडियो ट्रैफिक, सारा डेटा इन्हीं पाइपों से जाता है।
लेकिन उसके बदले टेलीकॉम कंपनियों को ज्यादा कुछ नहीं देती?
हाँ, बहुत कम। यही वजह है कि नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच अक्सर झगड़ा रहता है कि भाई नेटवर्क पर इतना बोझ पड़ रहा है, इसका खर्चा कौन उठाएगा।
ये तो हुई परतों की कहानी। अब किताब के दूसरे हिस्से पर आते हैं, स्टैक का बिजनेस, मतलब इस आर्किटेक्चर से बिजनेस कैसे चलता है।
हाँ, भाग दो, द बिजनेस ऑफ द स्टैक। इसमें तिवाना बताते हैं कि हर परत का बिजनेस मॉडल अलग होता है।
जैसे?
जैसे फिजिकल लेयर वाले हैं वो सब्सक्रिप्शन या लीज पर इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, एप्लीकेशन लेयर वाले जैसे क्लाउड प्रोवाइडर वो इस्तेमाल के हिसाब से चार्ज करते हैं, पे एज यू गो, या फिर ऐप स्टोर वाले कमीशन लेते हैं।
और कंटेंट लेयर वाले?
वो विज्ञापन से या सब्सक्रिप्शन से कमाते हैं। तो कंपनियों को एक स्टैक रणनीति बनानी पड़ती है।
स्टैक रणनीति मतलब?
मतलब उन्हें सोचना पड़ता है कि वो किस परत पर खेलेंगे, कहाँ वो दूसरों पर निर्भर रहेंगे और अपनी पोजीशन को कैसे मजबूत करेंगे, कैसे बचाएंगे।
और यहीं पर वो कोऑपरेशन वाली बात आती है।
हाँ बिल्कुल, कोऑपरेशन यानी कोऑपरेशन सहयोग प्लस कॉम्पिटिशन प्रतिस्पर्धा। डिजिटल दुनिया में ये बहुत आम है, कंपनियां अक्सर एक ही टाइम पर पार्टनर भी होती हैं और कॉम्पिटिटर भी।
इसका कोई अच्छा सा उदाहरण?
नेटफ्लिक्स और अमेज़न का उदाहरण सबसे क्लासिक है। नेटफ्लिक्स अपनी सारी स्ट्रीमिंग अमेज़न की क्लाउड सर्विस AWS पर चलाता है, मतलब वो AWS का बहुत बड़ा ग्राहक है।
हाँ।
लेकिन साथ ही नेटफ्लिक्स का सीधा मुकाबला अमेज़न की अपनी वीडियो सर्विस प्राइम वीडियो से है।
अच्छा, ये तो वाकई दिलचस्प है। या फिर एप्पल और गूगल?
हाँ, iOS और एंड्रॉयड एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन गूगल मैप्स तो आईफोन पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ऐप्स में से एक है, और गूगल सर्च सफारी ब्राउजर का डिफॉल्ट इंजन है जिसके लिए गूगल एप्पल को अरबों डॉलर देता है।
भारत में भी हम ये देखते हैं, है ना, जैसे डिजिटल पेमेंट ऐप्स, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम।
हाँ, ये सब एक दूसरे से कस्टमर छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अक्सर एक ऐप से दूसरे के QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर पाते हैं।
तो ये रिश्ते बड़े जटिल हैं, पारंपरिक बिजनेस सोच से ये समझ नहीं आते।
बिल्कुल, किताब स्टैक की इकोनॉमिक्स के और भी पहलुओं पर बात करती है, जैसे नेटवर्क इफेक्ट्स, स्विचिंग कॉस्ट्स।
स्विचिंग कॉस्ट्स यानी एक सर्विस छोड़कर दूसरी पर जाने में जो दिक्कत या खर्चा आता है।
हाँ, और डेटा का बढ़ता महत्व, ये सब चीजें मिलकर समझाती हैं कि क्यों कुछ गिनी चुनी टेक कंपनियां इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई हैं, उनका दबदबा क्यों बढ़ता जा रहा है।
अब आते हैं किताब के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, स्टैक का भविष्य, भाग 3, द फ्यूचर ऑफ द स्टैक। इसमें आगे क्या होगा इस पर बात है।
हाँ, इसमें राजनीति, रेगुलेशन और नई टेक्नोलॉजी की भूमिका पर चर्चा है, और सबसे पहले बात आती है स्टैक की भू राजनीति की, जियोपॉलिटिक्स ऑफ द स्टैक।
मतलब इंटरनेट अब सिर्फ बिजनेस का मैदान नहीं रहा?
नहीं, बिल्कुल नहीं, अब ये अमेरिका और चीन जैसी बड़ी ताकतों के बीच पावर स्ट्रगल का नया अखाड़ा बन गया है।
और तिवाना स्प्लिंटर नेट के खतरे की बात करते हैं, यानी इंटरनेट का बढ़ जाना।
हाँ, स्प्लिंटर नेट मतलब एक ग्लोबल इंटरनेट के बजाय दुनिया अलग अलग देशों या ग्रुप्स के अपने अपने इंटरनेट में बढ़ जाए, एक अमेरिकन ब्लॉक, एक चीनी ब्लॉक, शायद एक यूरोपियन ब्लॉक।
इसके उदाहरण तो हम देख ही रहे हैं, जैसे हुआवे का 5G विवाद था।
बिल्कुल, वो असल में फिजिकल और ट्रांसपोर्ट लेयर पर कंट्रोल की लड़ाई थी। चीन का ग्रेट फायरवॉल एप्लीकेशन और कंटेंट लेयर पर सरकारी कंट्रोल का क्लासिक उदाहरण है।
और अब सेमीकंडक्टर चिप्स और AI को लेकर जो रेस चल रही है,
वो भी इसी स्टैक पर कंट्रोल की लड़ाई है। हर देश अब डिजिटल संप्रभुता चाहता है, मतलब अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा पर अपना कंट्रोल। ये अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, उतना ही जरूरी जितना पहले समुद्री रास्ते कंट्रोल करना होता था।
इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है स्टैक का शासन, गवर्नेंस, मतलब इन बड़ी टेक कंपनियों को रेगुलेट कैसे किया जाए।
हाँ, दुनिया भर में ये मांग बढ़ रही है कि इन पर लगाम कसी जाए। नेट न्यूट्रलिटी की जो बहस चलती है,
हाँ, कि इंटरनेट स्पीड सबके लिए बराबर हो,
वो असल में फिजिकल लेयर, टेलीकॉम कंपनियां और कंटेंट लेयर, नेटफ्लिक्स, गूगल के बीच की लड़ाई है कि नेटवर्क रिसोर्स कैसे बटेगा।
और जो एंटी ट्रस्ट केस चल रहे हैं गूगल, मेटा, एप्पल, अमेज़न पर,
वो एप्लीकेशन और कंटेंट लेयर पर उनके एकाधिकार, उनकी मोनोपोली को चुनौती देते हैं। एक तरफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है, दूसरी तरफ इंटरनेट का पुराना विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड वाला आइडिया, इनके बीच एक तनाव है।
और आखिर में भविष्य का स्टैक कैसा होगा, अगला स्टैक?
हाँ, ये बड़ा सवाल है, क्या Web3 और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी इंटरनेट को फिर से डिसेंट्रलाइज्ड बना पाएंगी जैसा कि कई लोग उम्मीद कर रहे हैं,
या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स जहां अरबों डिवाइस जुड़ जाएंगे, एज कंप्यूटिंग, जहां डेटा क्लाउड की बजाय डिवाइस के पास ही प्रोसेस होगा,
और सबसे बढ़कर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो धीरे धीरे पूरे स्टैक में समाता जा रहा है। ये सब मिलकर पावर का बैलेंस कैसे बदलेंगे, ये देखने वाली बात होगी।
वाह, ये तो वाकई एक जबरदस्त और बहुत व्यापक विश्लेषण है। अगर हमें इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें, कुछ की टेकअवेज निकालने हो तो वो क्या होंगे?
मेरे हिसाब से सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक है, आर्किटेक्चर ही नियति है, आर्किटेक्चर इज डेस्टिनी।
मतलब
टेक्नोलॉजी को कैसे डिजाइन किया गया है, ये छोटे छोटे फैसले भी आगे चलकर बिजनेस और समाज पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। जैसे TCP/IP का खुलापन, उसी ने तो इंटरनेट पर इनोवेशन की बाढ़ ला दी।
दूसरा
अहम संदेश है मूल्य का लगातार ऊपर की ओर प्रवाह, अपवर्ड माइग्रेशन ऑफ वैल्यू। हमने देखा ना कैसे पैसा और पावर नीचे की इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर से ऊपर की एप्लीकेशन और कंटेंट लेयर की तरफ चले गए हैं,
जहां यूजर से सीधा कनेक्शन है, जहां डेटा है।
बिल्कुल, असली खेल वहीं हो रहा है। हम भारत में भी ये देखते हैं, डेटा कितना सस्ता हो गया है ना, लेकिन अच्छे ऐप्स, अच्छे कंटेंट के लिए हम ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं।
सही कहा। तीसरा सबक?
तीसरा कि मुकाबला अब सीधा नहीं रहा, कॉम्पिटिशन इज मल्टी लेयर्ड। वो कॉम्पिटिशन वाली बात,
हाँ, कि आपका पार्टनर ही आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है।
हाँ, कंपनियों को अब सिर्फ अपने जैसे कॉम्पिटिटर्स पर ही नहीं, बल्कि स्टैक में ऊपर नीचे की परतों पर भी नजर रखनी होगी। खतरा कहीं से भी आ सकता है।
चौथा पॉइंट?
चौथा, प्लेटफॉर्म्स ही नए राजा हैं। प्लेटफॉर्म्स एज चोक पॉइंट्स एंड सॉवरेंस, क्लाउड सर्विस, मोबाइल OS, ऐप स्टोर, ये डिजिटल दुनिया के नए गेटकीपर हैं, नए शासक हैं।
वो नियम बनाते हैं, टैक्स वसूलते हैं।
हाँ, जैसे ऐप स्टोर कमीशन, और वो तय करते हैं कौन अंदर आएगा, कौन बाहर रहेगा। भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में भी इनका असर कितना गहरा है हम सब जानते हैं।
और पांचवा और आखिरी?
पांचवा, इंटरनेट अब जियोपॉलिटिक्स का मैदान बन चुका है, जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन। स्टैक की अलग अलग परतों पर कंट्रोल अब देशों के लिए नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल पावर का सवाल है। 5G, AI, चिप्स, ये सब इसी बड़ी लड़ाई के मोहरे हैं।
और स्प्रिंटरनेट यानी इंटरनेट का बंटवारा अब सिर्फ एक डर नहीं, एक असल संभावना है।
बिल्कुल, किताब में कई ऐसी बातें हैं जो दिमाग में घूमती रहती हैं। कुछ खास विचारों को दोबारा देखें?
हाँ जरूर। जैसे वो पहला वाला, इंटरनेट का आर्किटेक्चर सिर्फ एक तकनीकी ब्लूप्रिंट नहीं है, ये वो रणनीतिक युद्ध क्षेत्र है जिस पर डिजिटल अर्थव्यवस्था का भविष्य तय हो रहा है।
इसका मतलब साफ है, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजी अलग नहीं है। डिजिटल दुनिया में जीतना है तो आर्किटेक्चर को समझना ही पड़ेगा, रणनीति वहीं से शुरू होती है।
फिर ये डिजिटल अर्थव्यवस्था में मूल्य लगातार स्टैक में ऊपर की ओर बहता है, नीचे की कमोडिटीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर और शीर्ष पर नियंत्रित यूजर अनुभव और डेटा की ओर।
ये सीधा इशारा है कि भविष्य में पैसा कहाँ बनेगा, यूजर एक्सपीरियंस और डेटा। जिसके पास ये है वही जीतेगा।
और ये कोऑपरेशन वाली बात, स्टैक में आपका सबसे बड़ा प्रतियोगी अक्सर आपका सबसे महत्वपूर्ण भागीदार होता है। रणनीति अब परतों के बीच निर्भरता के प्रबंधन का एक त्रिआयामी खेल है।
ये याद दिलाता है कि डिजिटल दुनिया में रिश्ते कितने कॉम्प्लेक्स हैं, कितने बदलते हुए हैं, सीधी रेखा में सोचना काफी नहीं है।
और आखिर में जियोपॉलिटिक्स वाला, राष्ट्र अब मानते हैं कि इंटरनेट स्टैक की प्रमुख परतों को नियंत्रित करना 21वीं सदी की राजनीति का मामला है। डिजिटल संप्रभुता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सदियों पहले समुद्री नियंत्रण था।
ये बताता है कि इंटरनेट अब सिर्फ हमारे फोन या लैपटॉप तक सीमित नहीं है, ये ग्लोबल पावर बैलेंस का, वैश्विक शक्ति संतुलन का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है।
ये सारी बातें सिर्फ थ्योरी नहीं है, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे काम पर सीधा असर है। इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो सकता है?
हाँ बिल्कुल है, जैसे उद्योगियों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये स्टैक मॉडल नए बिजनेस आइडिया सोचने में मदद कर सकता है।
कैसे?
वो देख सकते हैं कि स्टैक में कहाँ गैप है जिसे भरा जा सकता है, किस परत पर उनकी निर्भरता ज्यादा है उसे कैसे कम किया जाए। सोचिए स्ट्राइप या ट्विलियो जैसी कंपनियों के बारे में।
हाँ, स्ट्राइप पेमेंट आसान बनाता है, ट्विलियो कम्युनिकेशन APIs देता है।
उन्होंने यही तो किया, मौजूदा स्टैक के अंदर या उसके ऊपर अपनी एक नई जरूरी सब लेयर बना दी।
और बिजनेस लीडर्स के लिए?
उनके लिए ये मॉडल अपनी कंपनी की स्ट्रेटजी बनाने और छिपे हुए खतरों को पहचानने में मददगार है। खतरा सिर्फ आपके जैसे कॉम्पिटिटर से नहीं, स्टैक में ऊपर या नीचे बैठी किसी कंपनी से भी आ सकता है।
जैसे
मान लीजिए एक पारंपरिक मीडिया कंपनी है, उसे लगेगा कि उसका मुकाबला नेटफ्लिक्स से है, लेकिन असली खतरा शायद AWS या Azure से हो, जो कंटेंट बनाने और डिस्ट्रीब्यूट करने का पूरा तरीका ही बदल रहे हैं।
ये M&A और पार्टनरशिप के फैसले लेने में भी मदद कर सकता है।
बिल्कुल, निवेशकों के लिए भी ये बहुत काम का है। ये किसी कंपनी की असली ताकत, उसका मोट समझने का एक फ्रेमवर्क देता है।
मतलब सिर्फ बैलेंस शीट नहीं देखनी?
नहीं, देखना है कि कंपनी स्टैक में कहाँ बैठी है, क्या उसकी पोजीशन मजबूत है, क्या उसे नेटवर्क इफेक्ट्स का फायदा है, उसकी डिपेंडेंसीज क्या है। ये ज्यादा गहरी समझ देता है।
और सबसे जरूरी, पॉलिसी मेकर्स के लिए, सरकार के लिए,
उनके लिए ये स्टैक मॉडल ज्यादा असरदार नीतियां, ज्यादा इफेक्टिव रेगुलेशन बनाने में मदद कर सकता है, बजाय इसके कि आप बस बिग टेक पर बैन लगा दें।
आप खास परतों पर खास तरह के व्यवहार को टारगेट कर सकते हैं।
हाँ, जैसे क्या ऐप स्टोर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या क्लाउड प्रोवाइडर का दबदबा नए इनोवेशन को रोक रहा है, और ये राष्ट्रीय डिजिटल रणनीति बनाने में भी मदद करता है।
जैसे भारत सरकार का सेमीकंडक्टर मिशन है या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है।
हाँ, ये तय करने में कि किन परतों पर देश को आत्मनिर्भर बनना है, किन पर फोकस करना है।
तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है, आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही?
मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर हमें आज की डिजिटल दुनिया को सच में समझना है, तो हमें सरफेस के नीचे देखना होगा, उसकी बनावट, उसकी आर्किटेक्चर को समझना होगा, और ये स्टैक मॉडल उसके लिए एक बेहतरीन नजरिया, एक पावरफुल मेंटल मॉडल देता है।
और मेरे लिए जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो ये कि कैसे टेक्नोलॉजी डिजाइन के छोटे छोटे कांसी मामूली फैसले, जैसे किसी प्रोटोकॉल को खुला रखना है या बंद, वो आगे चलकर इतने बड़े आर्थिक और राजनीतिक नतीजे दे सकते हैं।
हाँ,
और ये भी कि कैसे पावर धीरे धीरे कंटेंट बनाने वालों से खिसक कर उन प्लेटफॉर्म्स के पास चली गई है जो उस कंटेंट को हम तक पहुंचाते हैं, उनका रोल कितना बदल गया है।
हाँ, और ये एहसास कि इंटरनेट अब सिर्फ तकनीक या बिजनेस का मामला नहीं रहा, ये देशों के बीच गहरे टकराव, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम मुद्दा बन गया है, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हर परत की अपनी अहमियत है, अपना रोल है, और उस पर कंट्रोल पाना ही अब सबका बड़ा मकसद बन गया लगता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकतुल फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।